نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق انسان کو جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ایک ہی صورت میں ہے کہ جب وہ اپنی آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے. آپ سب جیسے حدیث مبارک ہے کہ جیسے جیسے مجھ سے زمانہ دور ہوگا وہ بگڑتا چلا جائے گا. تو سب سے بڑی جو اس میں خرابی پیدا ہوگی اس زمانے میں بزگان دین جی کہتے ہیں وہ آخرت کی تیاری ہوگی. بندہ آخرت کی تیاری سے بہت دور چلا جائے گا یا آخرت کی تیاری کے اپنے اپنے معیار قائم کر لے گا, اپنا اپنا اسٹینڈرڈ بنائے گا. اصل قرآن و حدیث کی روشنی میں جو انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اس سے انسان دور ہو جائے گا, غافل ہو جائے گا, پرواہ نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ آخرت کی سب سے اہم اور سب سے بڑی تیاری ہے کیا. پتہ ہوگا تو آدمی اس کی تیاری کرتے ہیں نا. سب سے بڑی آخرت کی تیاری جو ہے, آخرت میں ساری منازل انسان کی آتی ہیں, موت سے لے کے آخرت تک جتنے منازل ہیں, سب سے اہم چیز جو ہے, سب سے اہم چیز جتنے بھی اللہ نے ہمیں چیز دی ہیں تیاری کے لیے, اس میں ہے تزکیہ. کیا یہ حدیث سے قرآن سے ثابت ہے اور بزرگان دین بتاتے ہیں اس کو. یہ سب سے اہم عمل ہے, اہم عمل ہے آخرت کے لیے. آپ اسی عمل کو دیکھیں آج دنیا کے اندر کہ اس تزکیے سے لوگ جو ہے غافل تو الگ ہیں, پانچ ہزار سال ہے آپ اس تزکیے کے قائل ہی نہیں ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں, اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تزکیہ کوئی چیز ہے. اور جو کوئی مان بھی جاتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے دل میں اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی اہم ہے یہ چیز. جس قدر یہ اہم ہے اس کی ہمارے دلوں میں اس کی اتنی وقت اور قیمت نہیں ہے, کیونکہ پورا آخرت کا دار و مدار جتنا بھی ہے انسان کے تزکیے پر ہے. تزکیہ انسان کا صحیح ہوگا تو آخری منزلیں اس کی بہت بہتر ہوں گی, اچھی ہوں گی. اور جو تزکیہ نہیں ہوا جس کا, وہ آخرت میں برباد ہوگا, ناکام ہوگا انسان. تزکیے کو سمجھنے کے لیے کہ ہے کیا چیز, نبی کریم سے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو بالکل قائل نہیں, جو قائل مانتے ہی نہیں, جو اس کو تصور ہی نہیں کرتے, کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی, یہ ہے تو بس ایسی ہی ہے. بہت سے اور اعمالوں کو ان کو سامنے پیش کر دیتے ہیں, لیکن سارا جتنے بھی اعمال ہیں سب کا انحصار جو ہے وہ سب اس پر ہے, انسان کی صفائی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دعا کی شکل میں کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے, میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بہت ہی اچھا بنا دے. سبحان اللہ. آپ یہ حدیث صاحب سنیں, اس میں مفسر نے کیا لکھا. پہلی چیز تو دو بالکل ڈیفائن کر دی اللہ کے نبی نے کہ دو چیزیں انسان کی ہیں, ایک ظاہر ہے اور دوسرا ایک باطن ہے, اور دوسرا کیا ہے ظاہر. دوسری چیز جو بیان فرمائی اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہ ظاہر سے ہم میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے, हम इंसान जो हैं जाहिर को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, हदीस का इशारा। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने जाहिर को सही करना नहीं चाहता? कोई मर्द कोई औरत जो शऊर रखता है, सब अपना जाहिर के बारे में माशाल्लाह बहुत एहतियात करते हैं, जाहिर को अच्छा करने के लिए अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छी खुशबू लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे जूते पहनेंगे, अच्छी शक्ल बनाएंगे, है या नहीं? सारे दिन हमारी जिंदगी सारी इसी पर लगती है कि हमारा जाहिर खूबसूरत हो जाए। घर से तैयारी से निकलने के लिए भी आदमी कुछ टाइम चाहिए होता है कि भाई मैं साफ सुथरा होने के, कि कोशिश पूरी ये होती है कि जब मैं जाऊँ तो बिल्कुल फिट फाट होकर जाऊँ, जिससे का भी जिस मजलिस में जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ, हत्ता कि थोड़ी चीज़ भी लेने के लिए आदमी ब्रेड लेने के लिए बाहर जाता है तो एहतियात करता है कि भी साफ सुथरा होकर जाऊँ। यही कहना लगने कि मेरी बातिन को मेरे जाहिर से अच्छा कर। तो ये अच्छा करना क्या है? ही तो तस्किया है, सुभानअल्लाह। साफ सुथरा करना ही तो तस्किया है, और क्या है? तस्किया तो साबित हो गया। तीसरा, इंसान अपने बातिन को साफ और सुथरा करता है, इसको कहते हैं तस्किया अरबी में। नहाना धोना, सफाई करना, बाल साफ करना, मूछें सही करना, दाढ़ी सही करना, तेल लगाना, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये तस्किया है और क्या है? सफाई है ना जी। तो यह हदीस साबित हो गया कि इंसान जो है अपने जिस्म की सफाई जो करता है वो तस्किया करता है, साफ सुथरा होता है। तो इशारा है कि अपना कि जो साफ सुथरा इंसान होता है, अपने आप को साफ करता है, कोशिश करता है, तो चाहिए कि बातिन को उससे ज्यादा साफ करे। ये बता रहे हैं मेरे बातिन को जो है मेरे जाहिर से अच्छा कर दे, जितना मैं इसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कितनी कोशिश करते हैं अपने अच्छा करने के लिए। अल्लाह ताला हकीकत तो यह है कि मेरा जो बातिन है उससे कहीं ज़्यादा उसको बेहतर कर, बहुत ही अच्छा हो मेरा बातिन। तो जाहिर की थिंकिंग होता है नहीं, हो जा सुभानअल्लाह। जाहिर इंसान क्यों अच्छा करता है? एक जहन में उसके नुकता होता है। चलो आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी बीवी है, वालदा है, जो कुछ है, उनके जहन में वही नुकता होता है। आप जा रहे हैं, आपने डिफरेंट रंग की कमीज पहनी है, डिफरेंट का साफा बांध दिया, पट्टी सलवार पहन दिया, कुछ और पहन बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी बीवी जो वालदा हो क्या कहेंगी? किधर जा रहे हैं ऐसे, कहाँ जा रहे हैं? क्या जाएगा दुनिया क्या कहेगी? क्या कहेगी दुनिया क्या कहेगी? ये मतलब ना, आप जब मैं तैयार होकर जाते हैं तो जहन में क्या होता है, क्या मैं सच चला गया तो लोग क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह के नबी कैसी नफसियात बयान फरमाता है कि तेरी अच्छाई जो है, जाहिर अच्छाई के मतलब तेरा यह है कि तू इसलिए अच्छा होकर जा रहा है कि लोग तुझे देखें, समझे भाई बड़ा साफ सुथरा आदमी। नहीं, अच्छाई जितनी तू कर रहा है जाहिर की, ये तू अपने लिए बेशक ना कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? लोगों के लिए कर रहे हैं, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा मजाक ना उड़ाए। तो दुनिया की वजह से इंसान, दुनिया की मुलाकात की वजह से, दुनिया में जाने की वजह से वो अपने आप को अच्छा करके जाता है, साफ सुथरा करके जाता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बातिन की सफाई तो उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्यों? कि तू वहाँ दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तू वहाँ तो अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा है। बोले सुभान अल्लाह। अब बताएं कितना फर्क है। वहाँ आप एक शावर लेंगे तो बातिन की तो हजारों शावर चाहिए, कि वहाँ तो मखलूक से मुलाकात है और वहाँ खालिक से मुलाकात है। तो फर्क क्या नहीं मखलूक की और खालिक की मुलाकात इंसान? यहाँ तो कहते दुनिया कहे गएगी सुभानअल्लाह, तो वहाँ ये नहीं कहते। अल्लाह वाले कहते हैं वो तू किस तरह फिर तो बातिन इतना गंदा है, तो अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह क्या कहेगा तुझे, इतना गंदा मेरे पास आ गया। और जाना नहीं है हमने, जाना मुलाकात नहीं करनी अल्लाह से। अब ये बताएं कि कितनी अहम चीज है इंसान की बातिन की सफाई और सुथराई, बुनियादी चीज है, फंडामेंटल चीज हो गई इंसान के लिए कि अल्लाह अपने एक, हमने हर हालत में अपने मालिक से मिलना है। और जब हम दुनिया के अंदर एक गंदे हालत में जाके किसी इंसान से नहीं मिल सकते, हमसे नफरत करता है, तो हम कैसे गवारा करेंगे कि हम अल्लाह के सामने जाके गंदी हालत में सामने हो जाए? गंदे घड़े हो जाए। तो जब ये शऊर इंसान में समझ आ जाती है कि मैंने मरना है, तो फिर किस चीज़ की तैयारी करता है? अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करता है। जब अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपने आप को साफ रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस्म से तो अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी। इंसान अल्लाह ताला से मुलाकात किससे होगी? बातन से होती है इंसान की। और सुभान अल्लाह, दुनिया में प्रैक्टिस में इंसान शुरू कर देता है बातन की सफाई की, तो अभी तो वहां बातन ताला जाने में देरी भी हो, लेकिन अल्लाह सुभान ताला दुनिया में मुलाकात शुरू कर देता है। ही अब कितने वाकयात में आपको सुना दूं, अल्लाह वाले से क्यों मुलाकातें हो जाती हैं फरिश्तों की? क्यों हो जाती हैं? इसलिए कि वो इतना एहतियात करते हैं अपने गंध के अंदर से, इतना एहतियात करते हैं गंध को साफ करने का, इतना कि शहर की परवाह नहीं करते। दुनिया गई तो कही क्या गए, क्या फर्क पड़ता है? हंसेंगे ना लोग, हंस दे रहे, लेकिन उधर तो ये मामला नहीं चल सकता। सुबह हम तो इतना सेंस रखते हैं कि भाई हमने अल्लाह से मुलाकात करनी है और हर वक्त अल्लाह से मुलाकात करनी है, तो उनकी नज़र जाहिर पर नहीं होती बल्कि कहाँ पर होती है? बातिन सफाई पर होती है। और ये जिस तरह बातिन की सफाई का नाम तो तस्की है, इसे जाहिर की सफाई का नाम तस्की है। अल्लाह अकबर। तो यही है मफहूम हदीस का। आगे बता जो इशारा फरमाया है कि मेरे जाहिर को यानी उससे भी अच्छा कर दे, यानी इतना जो जितनी मैं तैयारी करता हूं उससे भी ज्यादा तैयारी चाहिए बातिन की मुझे सफाई के लिए, कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है। तो पता चलता है कि जितनी कोशिश हम जाहिर को साफ सुथरा करने में करते हैं, उससे कई दर्जे पर ज्यादा हमें अपनी बातिन की सफाई चाहिए। ये भी है, अब सफाई का मामला आ गया, इसको हम तस्किया कहते हैं। पहली बात तो उसमें करनी चाहिए भाई या नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस है या नहीं इसकी? हम अपनी जिंदगी में देखें, जरा सवाल करें कि हम कितनी कोशिश करते हैं अपनी बातें को साफ रखने की। इंसाफ से बात, अभी हम घर से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, निकले हैं, किस पे जोर था हमारा? इमामों पे, दाढ़ियों पे, कपड़ों पे था या नहीं? परफ्यूम पे, सॉक्स पे, सबका था या नहीं था? किसी ने एक लम्हा भी सोचा कि यार मेरा अंदर कैसा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जिक्र करने जा रहा हूँ, अंदर की क्या हालत है? सोचा भाई किसी ने? अब फर्क देख रहे हैं आप कि कितना हमें आखिरत का यकीन है, कितना हमें अल्लाह से मुलाकात का यकीन है। हमें तो उस वक्त भी अल्लाह से मुलाकात का यकीन नहीं आता जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि भाई तेरे 4 घंटे 5 घंटे रह गए, तब भी हमारी कोशिश ये होती है कि ज़ाहिर हमारा सही हो जाए, बातिन की खैर है। यही वो डिजास्टर है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे जैसे ज़माना मुझसे दूर होता चला जाएगा, इंसान बेखबर होता चला जाएगा। अल्लाह वाले की मजालिस में जाना चाहिए, बैठना चाहिए दोस्तों, वहां से ये पैगाम इंसान को हकीकत में मिलते हैं। अल्लाह पाक गड़गड़ा के दुआ हमें होनी चाहिए कि किस हमें अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा दे, उन रास्तों पे हमें ले चल जो हकीकत में जो हमारे जिंदगी आखिरत बन जाए। जैसे हमारी ये फिक्र खत्म ही हुई, हमारी बिल्कुल सोच ही खत्म हो गई कि हम अपने अंदर की तरफ ध्यान करें कि उसमें है क्या, कितनी मिलावट है। जैसे ना हम अपनी मिसाल दी, हम आज सूफी हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी के जहन में ये बात आई कि जहाँ मैं जा रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, कपड़े का ख्याल आया, चीज़ों का ख्याल आया, किसी का ख्याल नहीं कि मेरा यार बातन मेरा कितना साफ है, मेरा अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, है ना फर्क भाई? इस सोच को डेवलप करना चाहिए, ये आखिर खौफ होना चाहिए। जहाँ अल्लाह ताला खौफ दिलाते हैं ना, मरना है तूने, जब मरने का नाम आए और यकीन मैंने मरना है, तो सबसे पहले मरने की तैयारी क्या है? अपनी सफाई को देखे। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब क्या है कि अपने रब से मुलाकात, बाहर जाने से मुलाकात। बाहर जाने का मतलब क्या है कि दुनिया से आपकी मुलाकात, फिर फला आदमी मिलेगा, फला आदमी मिलेगा, फला आदमी मिलेगा, ये होता है जब बाहर जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर से मुलाकात। तो जब मौत का नाम आता है तो मौत का मतलब ये रब से मुलाकात, अब उसके दरबार में हमने जाना है। अब सोचिए तो एक सेकंड भी इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए इस चीज से, हर वक्त इंसान को अपने अंदर होना चाहिए, अंदर की सफाई करनी चाहिए। आज जाके देखें आप, हम भी जाते हैं शॉपिंग में, आप भी जाते हैं, किसने मैं आपके पीछे लग जाऊँ ना, वो जो उठाई होते हैं हम ट्रॉली, ये क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या मेरे पीछे लग जाए, तो आधा सामान तो हमारा सफाई का होगा, टॉयलेट की सफाई, फलां की सफाई, ये सफाई भी उठा कर खड़ी होंगी, ये खुशबू आर्टिफिशियल खुशबू, सफाई में बहुत चीज़ें उठाते हैं, है या नहीं सामान, ट्राली भर लेते हैं, पैसे दे रहते हैं सफाई के लिए, करते हैं ना, क्योंकि जाके ये सफाई करेंगे, वो सफाई करेंगे, फलां अगर कहीं फंक्शन हो रहा है तो फिर तो सफाई में बहुत सी चीज़ें आती हैं सफाई करने के लिए, फूल लाओ फलां लाओ ये लाओ, कितना फिक्र है। कभी हमें अपने अपने अंदर झांका कि हमारे अंदर कितना गंदा है, इसको सफाई के लिए जाए, करना चाहिए दोस्तों ने, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये फिक्र नहीं है, अल्लाह की कसम बहुत ही सख्त हम धोखे के अंदर बैठेंगे उस दिन। हम नमाज पढ़ लेते हैं सर, एक एक जो खास एक ट्रेंड हमने जो रखा हुआ है ना, उस पर चले जा रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए दीन के मुताबिक हम नहीं चलते, जमाने ने हमें छुपा दिया है, अफसोस से कहना पड़ता है, ये पैगाम ही बहुत कम मिल रहे हैं, जगहों से पैगाम मिले चलते हैं, ये पैगाम भी नहीं मिल रहे कि कोई हमें झंझोड़े इस वक्त, क्योंकि वो खुद मुबतला धोखा हो चुके हैं, मिसल पैसे माल ये हो, ये हो जाओ फलां कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, एक दिन की अजीब स्केच हमने पैदा कर दिया। सबसे बड़ी चीज इंसान की क्या है, मौत, इतनी बड़ी चीज है कि इसका कोई एतबार ही नहीं है, इंसान को एतबार ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज इंसान की क्या चीज है, जब बोले तो जो सबसे बड़ी चीज मौत है, तो सबसे बड़ी तैयारी कौन सी होनी चाहिए हमारी, मौत की होनी चाहिए। सबसे बड़ा फिक्र किसका होना चाहिए, मौत का होना चाहिए। और मौत की तैयारी में सबसे बड़ा फिक्र क्या होना चाहिए, कि मैं अपने रब से कैसे मिलूंगा, कैसे मिल सकता हूं, मेरे क्या हालात हैं, आप सोचिए। तो मेरे भाइयों, ये सब चीज समझ अगर है, कि समझ के लिए हम हर वक्त फिक्र रखें, अल्लाह से तौबा करें और सारी फिक्रों को खत्म कर दें, सारी इबादत इसके ताबे हैं। अगर मौत की फिक्र आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारी फिक्रें खुद ब खुद आ जाती हैं, नमाज की भी आ जाएगी आपको, आज की रोजों की भी आ जाएगी, ज़कात की भी आ जाएगी, सकात सदकात की भी आ जाएगी, सब की आ जाएगी। अगर मौत की फिक्र नहीं तो कुछ भी नहीं आती। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करना है आखिरत का सौदे में, सबसे पहले हमें क्या चीज़ डालनी चाहिए अपनी ट्रॉली में, मौत की चीज़ मुझे मक्का चाहिए। मौत की चीज़ में सबसे बड़ी क्या चीज़ है, सफाई है। तो जैसे घर की सफाई के लिए चीज़ें खरीदी हैं, इस ट्रॉली के अंदर भी हमें क्या डालना चाहिए, अपने अंदर की सफाई के लिए भी चीज़ें डालनी, अंदर साफ है। और देख रहे हैं कि बात मैं आपको बता दूं कि अंदर का गंध तो इतना बड़ा गंध है कि दुनिया का कोई समुंदर भी आ जाए ना, सात समुंदर भी आ जाए, अल्लाह की कसम ये डस्ट के बराबर भी जो गंध होगा ना, अंदर का जो लगा है वो नहीं धो सकता। या तो आप सात पानी डालें गिलास, पाक हो जाता है आदमी, शावर के नीचे खड़े हुए तो पाक हो जाता है, साबुन ना लगे तब भी साफ हो जाता है आदमी। लेकिन जो अंदर का गंध है, सात समंदर भी आ जाए अंदर, सात समंदर भी आ जाए मेरे भाइयों, एक गंध का स्पॉट जो होगा अल्लाह की कसम वो नहीं धुल सकता, दहाई नहीं पानी, इसलिए दहाई नहीं पानी डाले जाए, उंडले जाए पानी, शैम्पू लगाए जाए, साबुन लगाए जाए, लक्स लगाए जाए, अल्लाह ही अंदर का नहीं धुल सकता। दो ही चीजें इसको धो सकती है, या तो अल्लाह पाक ने जो साबुन पेश किया इसके लिए वो धोएगा, या फिर जहन्नुम की आग उसको धो सकती है, बिल्कुल। और कोई चीज को नहीं धो सकती, चाहे कितना ही जोर लगा ले, तो जो गंध लग गया है वो बढ़ेगा घटेगा भी नहीं, उसी हालत में इंसान जाएगा। वो गंध क्या है, कुरान ने भी तो बताया, सूरह हिजरात में पढ़ लें, झूठ गइबत हसद लालच दुनिया का लालच और जनाब गइबतें फ्रॉड हकूक मारना लोगों के जुल्म करना, यानी कोई एक लिस्ट है पूरी, सारी की सारी जो गंध कहाँ जाके जमा होते हैं हमारे, अल्लाह के नबी ने भी तो फरमाया मेरे मौला कि हमें मेरे बातिन को साफ कर दे, सारे इन गंधों के साथ हम लगे हुए अपने अजों में नवाजों में सब चीजों में। पहली चीज तो भाई सफाई है ये नहीं, तो ये जो गंध अल्लाह ने लगाया, इस गंध को साफ करने का नाम, जिस तरह सफाई मतलब अच्छाई है जाहिर करना, वही चीज़ है, गंध को अंदर से साफ करने का नाम ही तस्किया है। इससे कौन इनकार कर सकता है मुझे बताया, इससे कौन मुनरिफ हो सकता है। जो ये लोग इसके खिलाफ हैं कि तस्किया है ही कुछ नहीं, अब खुद अंदाजा लगा लें उनके दिमाग को मातम करने का कि उनका हाल क्या है, जो मानते ही तो करेंगे किबर है, झूठ है, रिया है, हसद है, दुनिया है, और एक एक की हिस्ट्री हम लेना शुरू करें, अल्लाह अकबर, इतने इतने अजाब हैं उनके, इतनी इतनी चीजें हैं, और अल्लाह ने इस वक्त इतना बड़ा ऐसा पानी दिया हुआ है इसके लिए, सुभान अल्लाह, गंध को साफ करने का ऐसा खूबसूरत पानी दिया हुआ है कि फरमाते हैं आसमान और जमीन भी इस गंध से तेरे अंदर भरे हुए हैं, मेरा पानी ऐसा है कि उसी वक्त साफ कर देता हूं। अल्लाह की कसम, क्योंकि हम इसका एहसास नहीं, हम करते ही नहीं, हम इसकी अहमियत का एहसास नहीं, हम चाहते ही नहीं, हमें पता नहीं कि सजा क्या होगी। अल्लाह के सामने पेश ही नहीं सुख, इतने गंदे होंगे, इतने गंदे होंगे, अल्लाह के सामने पेश कैसे होंगे, डायरेक्ट दरवाजा खुल जाएगा जहन्नम का, भेजो भेजो, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, साथ में निकालो उसको। इसकी बहुत फिक्र करनी चाहिए। कोई इंसान ऐसा मुझे बता दे जो ये दावा कर दे कि मुझ में चीजें नहीं है, मैं नहीं करता, मेहनत भी नहीं करते, हम सोचते भी नहीं, फिक्र भी नहीं करते। पहली चीज जो है, मुझे जो एहसास हुआ इस चीज का कि सबसे ज्यादा हमें एहसास होना चाहिए, जैसे कपड़े पे धब्बा लग जाता है सफाई करते हैं, एक एक धब्बा जो अंदर का है ना हमारा, उसको देखते रहे हर लम्हा, ख्याल दिल के अंदर कि कोई भी ऐसी गंद चीज, एक स्पॉट भी नहीं होना चाहिए अंदर हमारे अंदर सफाई। अब कि इसका कौन सा शावर है, अंदर से जाकर हम शावर लें, कौन सा इसमें वो चीजें हैं जो हम सोप हम लगाएं, कौन सा इसके अंदर साबुन है जो हम इस्तेमाल करें मौला, जिसके साथ हम अपने गंद को साफ करते हैं, साथ के साथ साफ हो जाए, करेंगे भाई? इससे इंपॉर्टेंट है तो बहुत, ये तो तकीर नहीं मैं कर रहा, ये तो एक हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, लेकिन पूरा कुरान ये मैसेज दे रहा है इस चीज का, कद अफलाह मन ज़क्का व कद खाबा मन दस्सा, पूरा कुरान ये कुरान कह रहा है, और भी आयत हैं तज़किरा कि है ही नहीं सकता का, वो फला पा ही नहीं सकता, बेशक नमाजी हो, बेशक हाजी हो, बेशक गाजी हो, बेशक शहीद हो, वो पा ही नहीं सकता, ऐसा शहीद भी धक्का दे के जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, ऐसा आलिम भी, हाफिज भी, कारी भी, सब जहन्नुम फेंक दिए जाएंगे जिसके अंदर ये रिया, कब्र, झूठ सब कुछ होंगे, है या नहीं हदीस पूरी, कितनी बड़ी हदीस है। तो किसे कद अफला मन ज़क, पाक वही होगा, कामयाब वही शख्स होगा जो बिल्कुल अंदर से पाक हो। और ये मैं आपको बता देता हूं कि हम इतने पागल बेवकूफ हैं, इतने अपने जाहिर की सफाई पे जितना हम टाइम लगाते हैं ना सफाई करने में, अंदर की सफाई का जो इतनी बड़ी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की सफाई के अंदर तो एक सेकंड लगता है पाक हो जाता, एक सेकंड, कितने देर लगती है, लेकिन नफ्स और शैतान हमें नहीं होने देते, करनी चाहिए नहीं भाई, कि मौत तो सामने है, तो अल्लाह पाक ने उसका जो हमें सौंप दिया है, करम फरमाया, रहम फरमाया, तो जैसे एक हदीस अक्सर मैं सुनाता हूँ, सही हदीस है कि सरकार उसमें खिदमत में शख्स हाजिर हुआ, चीखता पुकारता रोता, एहसास हो गया उसको कि मैं बहुत गंदा हूँ, मौत का डर तारी हो गया। अल्लाह पाक हमें भी मौत का डर तारी करे, कभी हमारे जबान से निकले यार सारी रात मैं मौत से डरता हूँ, मुझे नींद नहीं आई, कभी ऐसा वक्त आया हमारे, दुनिया की कोई फिक्र लग गया तो सारी रात करवटें बदलते हैं, यार मेरा सुबह ये काम होना है, फला मुकदमा लड़ना है, फला जगह पे जाना है, मैंने ये फला एप्लीकेशन देनी है, फला जगह मैंने मॉर्गेज का ये करना है, तो करवटें बदलते रहते हैं आदमी, है या नहीं है? नहीं, बहुत कम, क्या मुझे समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी इसलिए नहीं सो रहा हो कि कहीं यार मैं मर ना जाऊँ, इतना गंदा हूँ, मैं किस तरीके अपने आप को अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, किस तरह ये हाल है हमारा, क्या हमारा हाल होगा समझ नहीं आता, यही वो जमाना आ गया। کہ ہوتے ہیں مومن جاتے ہیں کافر, یہ وہ زمانہ ہوتا, ہوتے ہیں مومن جاتے ہیں کافر. اب ایسی باتیں کرنے والے اسے بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, پاگل کہتے ہیں اس کو. میں بڑے مسجد کے اندر یہ باتیں نہیں کر سکتا ہوں, مجھے دھکے دے کے نکال دیں گے مسجد سے, باہر نکال بدعت کر دے پہ. جو ہم کام کریں گے نا, نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کر لیں اور تو کوئی ان کو وہ نہیں ملے گا معاملہ, ایک نقطہ پہ یہ پکڑ لیتے ہیں. تو کیا ہمارے جو کیا سن رہے ہیں بات, تو لمدہ جا رہے ہیں میسج, ایسی کوئی بات. تو یہ تو ایک ایسا زمانہ آ گیا جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا, یہ تو بے ہاتھوں سے نکل گیا ہمارے, کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں اپنے آپ کو اس بات. تو اتنا آسان اللہ پاک نے اس طریقے کو بنائے میرے بھائیو کہ ہر وقت ریڈی ہمیں رہنا چاہیے موت کے لیے, اور موت کے لیے ہمیں ہر وقت غسل کرتے رہنا چاہیے اپنے اندر کی باطن کے لیے. وایا آ کے چیخا پکارا, مر گیا مر گیا رسول, مر گیا, تباہ ہو گیا, کیا ہوا تجھے, بہت سخت گناہ, میرے تو اتنے گناہ ہیں, اب بتائیں کتنے گناہ ہوں گے اس کے. زمین آسمان بڑھ گیا, چیخ رہا ہے پکار رہا ہے, ادب ہی نہیں رہا اللہ کے نبی کے سامنے. کہتے کیا ہوا, اللہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ, میں کس طرح نکلوں, تم سمجھ نہیں آتا. ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ مثال بتا رہی ہے میں, گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہے, آدمی باہر جاتا ہے گند لگ ہی جاتا ہے, صافہ میلا ہو ہی جاتا ہے, قمیض میلی ہو ہی جاتی ہے, تو گھبراتے ہیں کبھی آپ, آپ کو پتا ہے جاؤں گا واشنگ مشین میں ڈال دوں گا الحمد للہ صاف ہو جائے گی. کبھی کسی روتا دیکھا, ہاں میری قمیض میلی ہوگی, میرا کرتا میلا ہو گیا, میرا برقعہ میلا ہو گیا, کبھی وہ کسی کو دیکھا روتا ہے آپ نے. دیکھیے فکر آخر چڑھتا ہے انسان پہ, تو کبھی اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا فکر دے, ہمیں راتوں کو اٹھ کے ہم روئیں اللہ کے سامنے, اللہ والا ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا حال. شیطان مطمئن, نہیں نہیں تم نماز پڑھی ہے, پھر کہنا نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حالت میں پڑھی ہے, میں نے میری حالت کیا تھی, میں جس وقت نماز پڑھ رہا تھا میں جھوٹا بھی تھا, دنیا دار بھی تھا, فراڈی بھی تھا, بدماش بھی تھا, ہر صفت میرے اندر موجود تھی جس میں سجدے اللہ کو کر رہا تھا. تسلیم کرتا آدمی اپنے اندر, تو اس نے رویا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب علاج دے دیا, پوری امت کو بتا دیا کون سا صابن لگانے چاہیے ہمیں. تب جب اتنے بڑے آدمی کو جو کہہ رہے ہیں میرے ہائی کوئی صاحب نے اللہ کے نبی سامنے, اس کو صفائی کر دی, فرمایا ادھر کیا بات ہے, یہاں بتایا میں کیا, اللہ کے نبی نے ادھر آ جاؤ, اللہ کے نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا توبہ, اللہم انی توبہ توبہ, تو پڑھ کر ماں مغفرت کر, اس نے کلمہ پڑھا, کہتا پھر کیا, اس نے پھر کہا, آپ نے کہا پھر کیا, پھر کہا, کہتا جا جو چاہے کر سب معاف ہو گئے. وہی روتا ہوا انسان بالکل ایسا ہو گیا جیسے فرشتہ ہوتا ہے, بالکل چادر ہی صاف ہوگی, ہوئی بہت گریا, جو کچھ اس نے گناہ اس نے کیے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب نے بہترین طریقے بتا دیا. ایسا صابن ہے توبہ کا, اللہ ہو, یہ تسیے کا پہلا سبق ہے بھائیو, ہے نا. جب کوئی آتا ہے ہمارے پاس بیعت ہونا ہے توبہ کرنی, ایسے آتے ہیں لوگ بھی ہم نے توبہ کرنی, تو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ, میں تو وہی سیکھا ہے بزرگوں سے, میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو میرے شیخ نے, اس کے شیخ نے, اس نے شیخ نے, پہنچتے پہنچتے کہاں جاتی ہے بات, ابو صدیق, پھر ابو صدیق سے کہاں جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس. تو اللہ کے نبی کا فیل تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کیا تھا. تو ایسے ہر آدمی آتا ہے, جیسے وہ آدمی آیا تھا روتا ہوا جی مجھے توبہ کرائیں بیعت کرائیں, تو شیخ ویسے بیعت کرا دیتا اس کو. جب ویسے بیعت ہوتا ہے تو اللہ کی قسم وہ ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ شخص پاک ہوا. تو ہم ہاتھ بھی نہیں پکڑتے کسی اللہ والے, میں نے قسم کھا کے بات, کیونکہ یہ تو جانتے ہیں علماء کرام کی سند مل رہی ہے نا حدیث کی, کہاں پہنچ رہی ہے, ہر فیل سند نہ ملے, جس کو یقین نہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, کہ کہاں جا کے سند ملتی ہے, کہ اس شخص نے آ کے جو فیل کیا وہ ان کے سامنے آئے, دوتا اللہ کے نبی کے پاس آیا, انہوں نے فیل کیا, ابو صدیق کے پاس ہے, بڑھتے 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 علی مرتضیٰ کے, علی مرتضیٰ نے مجھے سکھا دیا تو یہ کام کر. اب جو کوئی میرے پاس آتا ہے آدمی, میں آنکھ بند کر کے وہی کام کرتا ہوں جو میرے شیخ نے, اس کے شیخ نے, اور جو شیخوں کے شیخ اللہ کے نبی نے کیا. تو پھر اللہ کے نبی نے کیا بشارت دی کہ جا عیش کر سب معاف تیرے, تو وہی شیخ کہتے جا تو پاک ہو گیا بچوں کی طرح معاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. यही कर रहे हैं भाइयों, इसी के नारे मारते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जमाना कितना भी गंदा हो जाए, अल्लाह के हबीब ने हमारे लिए, हम उनकी उम्मत में से, रास्ते बना के रखे। बस कोशिश ये करे आदमी कि जब किसी मजलिस में जाए, बैठ जाए, बातें पहुंच जाए, तो फिर पक्का हो जाए, जब बकवासबाजी ना करे, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहती आदमी की बात जो करता है आदमी। कुछ शक है ऐसे भाई, मुझे बताओ, सही से बताओ, किसी की शक है अभी? कितना जबरदस्त रास्ता बताया, सारी बुखारी मुस्लिम की हदीसें मैं आपको सुना रहा हूं, उठा कर देखने किताबें, और मकाम जमात बैठी उनसे, कितना आसान तरीका है। तो यह है अंदर की पाकी। हर वक्त इंसान को जब खौफ होगा अल्लाह से मिलना है, तो क्या करेगा? यकीन किसी अल्लाह वाले के पास जाके भागता हो जाएगा कि मर गया, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, गंद भरा है, हजूर मुझे तोबा करें। और तोबा की बात करें, औरत हो या मर्द, दुआ करें अल्लाह पाक हमारे में शऊर पैदा करे, उम्मत का हर फर्द इस तरह भागता हो जाए किसी अल्लाह वाले के पास और जाके तोबा कर ले, अपनी जिंदगी को बना ले। देर नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि अल्लाह नाराज होते हैं कि मैं इसने रास्ते खोले, तुम देर कर रहे हो, देर मत करो इसमें, तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए आदमी को, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ा अल्लाह ताला सुन दिया, तो तौबा हो गई। अब कपड़ा हो गया आपका, कैसे इंतजाम किया अल्लाह के नबी ने? आप ये बताए, हम घबराए नहीं, कपड़ा गंदा हुआ, सीधे गए कहां डाला? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन ने क्या कर दिया? साफ कर दिया। हमने गुनाह कर लिए, हम कहां गए? तौबा की वॉशिंग मशीन को, अल्लाह वाले के पास। उसने हाथ पकड़ा, हमें क्या कर दिया? पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। इस तरह कपड़ा पाक हो गया, इस तरह क्या पाक हो गया? इंसान पाक। ठीक है, अब फिर हमने कपड़ा पहन लिया, बोले सुभान अल्लाह। अब फिर हाथ बाहर निकल आए, बोले सुभान अल्लाह। फिर गंद लग गया, बोले सुभान अल्लाह। फिर हमने क्या किया? कपड़ा उतारा, उतार के फिर कहां गए? वॉशिंग मशीन में। फिर पकड़ा, फिर डाल दिया, कपड़ा क्या हो गया? अल्लाह के हबीब ने ये तरीका बताया कि तू तौबा करेगा, पाक हो जाएगा, लेकिन फिर तूने दुनिया में जाना होगा, क्योंकि तेरा इम्तिहान जारी है अभी। सुभान अल्लाह। देखिए, मैंने तुझे तरीका बता दिया है कि तू गंदा रह नहीं सकता, तो फिर अब क्या करेगा? जैसे कपड़ा दोबारा डाला, तो तुझे मैं एक और चीज बताता हूं कि तेरा फिर बात साफ होता जाएगा। अल्लाह ताला वो क्या है कि सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करता है। रात के जितने गुनाह होंगे, जब सुबह बैठेगा और जब अल्लाह को याद करेगा, तो सारे ही साफ। अल्लाह, सुबह के सारे गुनाह होंगे, शाम को बैठेगा तो सारे ही साफ। और जिसके सुबह और शाम साफ, उसके पारे सारे ही साफ। और क्या चाहिए? हम ये काम करते हैं नहीं जी, फिर मौत। कोई इतनी तैयारी हमारी नहीं, ना हम किसी अल्लाह के पास जाते हैं, ना उससे तौबा कराते हैं, ना फिर उससे ये अमल लेते हैं कि हम सुबह शाम जिक्र करके आप अपने आप को साफ करते रहें। सारी चीजें फजूल लगती हैं, बस एक साइड में रखा ही नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा शैतान का वार हो गया कि हमें काफिर बना दिया, मुनकर बना दिया, जहन्नुम के लिए तैयार कर दिया। यानी उन अफाल की तरफ भी नहीं जाने देता कि जिससे हमें जन्नत नसीब हो जाए। घर के पर पड़े पड़े हैं, मस्जिदें मस्जिद पड़ी है, मजमे के मजमे लगे हुए हैं। तनासुब ले लें आप, परसेंटेज निकालेंगे कितने लोग ये काम करते हैं, मुझे आप पता। सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं दोस्त? कितने लोग ये परसेंटेज, कितने लोग इतना खौफ करके चलो चलो अल्लाह, किसी अल्लाह वाले को ढूंढते फिर जाते हैं कि हम तौबा करा दें। हमने हदीस पढ़ी थी, वहां जाने के बाद इंसान के गुनाह साफ हो जाते हैं, और फिर जस्तजू पे लग जाते हैं कि हमने अपने आप में गंद नहीं करना, हमें डालना बाकायदा। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को तैयार रखते हैं, सुबह भी जिक्र कर लेते हैं, शाम को जिक्र कर लेते हैं, अल्लाह के यहाँ गिड़िया भी करते रहते हैं और एहतियात भी करते रहते हैं। जहर जब आप सफेद कपड़े पहन के जाते हैं, एकदम से नहीं गारे में जाते, बारिश हुई तो बचाएंगे, गंद से भी थोड़ा बचाएंगे, एहतियात करते ही नहीं करते, फिर भी गंदा हो जाता है कपड़ा। तो इसी तरह इंसान जब पाक साफ होकर निकलता है, तौबा करके निकलता है, तो फिर एहतियात लाजिम है उस पर, इससे ही बचे, उससे ही बचे। ऐसी मस्जिद से ना जाए जहाँ गीबत है, झूठ वाली जगह पर भी ना जाए, हराम वाली जगह पर भी ना जाए, बुरे काम भी ना करे, गलत बिजनेस भी ना करे। फिर यह एहतियात भी चाहिए, नहीं चाहिए इंसान बे एहतियात तो कोई काम नहीं कर सकता, बस कहीं बड़ा फजूल आदमी। या दो किस्म के बच्चे हो, माँ उसके एक साफ सुथरा करती है, कपड़े पहनाती है, वो बहुत एहतियात करता है, शाम करता है, थोड़े बहुत दबे होते हैं, एक बच्चा जाते मारता है, उसमें कीचड़ के छांग मारता है, फुटबॉल खेलता है, खूब गाला डालता है, किसकी पिटाई होगी, पहले की या दूसरे की? दूसरे की। पहले गंध उसमें लगा है, तू तो पत्ती एहतियात ही नहीं की तूने, तेरे अकल ही नहीं थी तेरे में। तो इसकी बात है ना कि जब तौबा करा दी है, साफ सुथरा अल्लाह ने कर दिया है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एहतियात तो करनी चाहिए। उस एहतियात का नाम तसव्वुफ में कहता है तकवा, पाकीज़गी। पाकीज़गी जब तकवा जो कहा जाता है, ये तकवा ये है कि जब तो, जब तौबा कर ले तो उस वक्त क्या चीज अख्तियार कर? तकवा अख्तियार कर। नहीं, सब समझा रहा हूँ कुरान की जबान से। तकवा तकवा करते थे, ये तकवा है कि तौबा के बाद जिस एहतियात का नाम है उसको क्या कहा जाता है? भाई मुत्तकी हो गया, बच रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर तौबा के आदमी मुत्तकी नहीं होता, जूते मारो उसको, बकवास करते रहो, बड़ा मुत्तकी नवाज देख रहा है। जी हाजी, बड़ा मुत्तकी है। जो कहने वाला सबसे बड़ा चोर वो होगा। मुत्तकी कौन होगा? कि जिसने तौबा की होगी और तौबा करने के बाद वो अपने आप को बचा रहा होगा। फिर हम नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला कहता है कि हाजा मुत्तकी, ये बंदा मेरा मुत्तकी है। बचता कर रहा है, कोशिश कर रहा है, छींट ना पड़े, झुड़ना पड़े। नहीं समझे बात मेरी? आई बात को समझ? करेंगे तो पक्की तौबा। साथियों को कहा करें, आपने जन्नत में जाना है, आपके रिश्तेदारों ने नहीं जाना, घर वालों ने नहीं जाना, माँ ने नहीं जाना, उनको नहीं बताना। जब इसके मतलब आपको यकीन नहीं है बातों का, आप समझते तमाशा है। अगर आपको मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत हो, अपने चालू वालों से मोहब्बत हो, अपने बच्चों से मोहब्बत हो, तो आज आपको तो फिक्र नहीं पड़ेगा ये दुख, ये तो मन नहीं, तो बहुत गंदे काम कर रहे हैं, क्या करें। तो हर हालत में उनको मजबूर करेंगे, जाओ किसी अल्लाह वाले के हाथ पे तौबा करो। वो आज तो अल्लाह ताला ऐसे इंतजाम कर दिया है कि अल्लाह वाले अल्लाह के पास जाने की जरूरत भी नहीं, टेलीफोन पे ही काम हो जाता है। वो बैठा है कनाडा में, बैठा है एक औरत, अल्लाह फोन आता है कि जी मैं तौबा करनी है। शेख बैठा है जनाब किसी शहर में बैठा है, नक्शबंदी शेख हो, लेकर उसका कर्ण बहुत जल्दी पहुंचता है। उसमें कर्ण तेज होता है क्योंकि इसमें जात है ना उसमें। हाँ याद रखें, नक्शबंदी शेख के अंदर क्या है? जलाल होता है क्योंकि इसमें जात घूमता है उसके अंदर। उसमें इतना जला होता है कि कोई अगर पोल्स पे बैठा होगा ना, यहां से बैठ के तवज्जा करेगा, अल्लाह की वजह से तौबा करा देगा उसको। कितना आसान काम है। कई कहते जी मैंने अपनी मेरी बीवी तो जना, मैं तो यहाँ हूँ जी, मेरी बीवी तो इंडिया में फला जगह रहती है, हैदराबाद धक्कन में, परवाह ना कर उसको, बोल फला टाइम पे तैयार हो जाए, वजू करके बैठ जा, इंशाल्लाह ऐसी पाक हो जाएगी जैसे तू हैरान हो जाए। अल्लाह कैसे इंतजाम कर दे इन चीज़ों पर, हम ये भी नहीं करते। करेंगे या दिमाग ही चाटते रहेंगे? करेंगे ना। हाँ, तैयार करें, घर वालों को तैयार करें, बाहर वालों को तैयार करें, उसका फिक्र करें, अपना फिक्र करें। पहला काम क्या है? मौत, मौत का फिक्र, मौत की तैयारी का पहला काम क्या है? सफाई बात, सफाई बातें का पहला कदम क्या है? किसी अल्लाह वाले के हाथ पे तौबा करना। उसके बाद फिर क्या है? तकवा अख्तियार करना। तकवा किसको कहते हैं? कि फिर एहतियात और बच के जिंदगी गुजारना। ये सारा दीन है, यही इसी का नाम कहता है एक दिन सिरात मुस्तकीम, जो हर नमाज में हम मांगते हैं। ये है। अब हो गया नमाज का टाइम, तो इंशाल्लाह अब जिक्र की बात करेंगे, ईशा के बाद जिक्र होगा इंशाल्लाह। ठीक है,
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا تو ہمارے اعمال قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا کریم ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا اللہ اپنی ناراضگیوں سے بچا لے، اے میرے مولا ہمیں دوزخ سے بچا لے، یا اللہ ہمارے سارے کام بہتر فرما دے، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري. يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا، يا قاضي الحاجات اقضى حاجاتنا، يا دافئ البلايات ادفع بلاياتنا، يا دافئ البلايات ادفع بلاياتنا، يا دافئ البلايات ادفع بلاياتنا، يا شافي المرضى اشف مرضانا، يا شافي المرضى اشف مرضانا، يا شافي المرضى اشف مرضانا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا اله الا انت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واسرارنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.